दीवा और आर्यांश आज शाम को घर आए तो फिर उन दोनों के बीच टेंशन का माहौल था। आर्यांश ने सीधे सीधे कह दिया था कि वो दीवा को इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद नहीं करेगा, जबकि दीवा इस इंतज़ार में थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आर्यांश उसे जाने देगा। आर्यांश के मना करने पर दीवा के सब्र का बांध भी टूट गया था। वो आर्यांश पर गुस्सा हो गई थी। दीवा ने अपने गुस्से में आर्यांश को कुछ भी बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे आर्यांश से डर लग रहा था, क्योंकि अचानक वो उसके करीब आने लगा था। आर्यांश ने उसे पकड़कर एक झटके में अपनी बाहों में कस लिया था। वो दीवा के कान के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, दीवा बेबी, शायद अभी तुम ठीक से मुझे जानती नहीं हो। आर्यांश मुश्किल से ही दीवा को उसके नाम से बुलाता था। मुझे तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, दीवा ने कसमसाते हुए कहा। आर्यांश ने उसे कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था। दीवा जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, आर्यांश उसे उतना ही कसकर पकड़े जा रहा था। इस वक्त उसे एक गुड़िया वाली फीलिंग आ रही थी, जिसके साथ आर्यांश जब चाहे खेल सकता था। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मुझे समझना होगा। अगर नहीं समझती हो तो मुझे समझाना अच्छे से आता है। मैं तुम्हें हर एक चीज़ सिखाऊंगा, आर्यांश ने ईविल स्माइल के साथ कहा। आर्यांश की बातों से दीवा समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसे डर लग रहा था कि सुमन वहां ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त वो लिविंग रूम में था। आर्यांश को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं रहती थी कि सुमन किस वक्त कहाँ है, बस उसे अपने मन की करनी होती थी। अचानक आर्यांश ने दीवा को घुमाकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया और फिर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसने दीवा को सोफे पर धकेला और उसके ऊपर आ गया था। आर्यांश की बॉडी का पूरा वजन दीवा के शरीर पर आ गया था। दर्द के मारे दीवा के मुंह से आह निकल गई। आर्यांश ने उसे देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा, इतनी नाजुक हो क्या? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम चिल्लाने लगी। दीवा ने घूरते हुए उसे देखा। वो कुछ कह पाती उससे पहले आर्यांश ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। किस करते हुए उसके हाथ दीवा की शर्ट के बटन खोलने लगे। वो काफी बेरहमी से उसे किस कर रहा था। दीवा को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने आर्यांश के कंधे पर टैप किया। तब कहीं जाकर आर्यांश ने उसे छोड़ा। दीवा जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगी। जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो फिर साथ रहने का क्या कारण है? तुम्हें जो करना है जल्दी करो, फिर खत्म करो सब, दीवा ने कड़वाहट से कहा। दीवा प्यार के बारे में ज्यादा ना जानती हो, पर आर्यांश की हरकतों से उसे एक बात साफ थी, वो उसे प्यार नहीं करता है। दीवा, अभी भी समझ नहीं आया तुम्हें? तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करने का हक ही नहीं है। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही तुम्हें मेरे करीब आना पड़ेगा, आर्यांश बेरहमी से बोला। जब भी वो दीवा का नाम लेकर बुलाता था, दीवा को उससे और डर लगने लगता था। दीवा ने अपने कपड़े सही कर लिए तो आर्यांश उससे दूर होकर बैठ गया था। दीवा को इस वक्त कमरे का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। वो उठकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन आर्यांश ने उसे रोकते हुए कहा, यहीं बैठी रहो। मजबूरन दीवा वहां पर बैठ गई थी, जबकि आर्यांश अपना लैपटॉप खोलकर काम में लग गया था। देखा जाए तो आर्यांश ने एक तरह से दीवा को सजा दी थी कि उसे उसके पास ही बैठकर उसे ही देखना होगा। दीवा नम आंखों से आर्यांश की तरफ देख रही थी। उसने उसकी मदद की थी और वादा किया था कि सिर्फ 2 महीने उसे उसके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकरता हुआ नजर आ रहा था। अगर दीवा को पहले जरा भी अंदाजा होता तो वो कभी अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाती। दीवा ने खुद को गहरी सांस लेकर नॉर्मल किया और फिर बातचीत का टॉपिक बदलते हुए आर्यांश से कहा, तुम्हारी बहन ने वीकेंड पर मुझे डिनर के लिए बुलाया है। आर्यांश अपने काम में लगा था। वो जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने दीवा की बात सुनकर भी ना सुनी हो। दीवा ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, वर्तिका ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हारी मर्जी, आर्यांश ने ठंडे स्वर में कहा। आर्यांश के ये शब्द दीवा के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी मर्जी? उसकी मर्जी ही तो नहीं चलती थी। जब आर्यांश अच्छा बर्ताव करता था तो दीवा को ये किसी अच्छे सपने की तरह लगता था, जबकि सच्चाई उससे पूरी तरह अलग थी। उसका ठंडा बर्ताव दीवा को सबसे ज्यादा हर्ट करता था। दीवा उठी और वहां से जाने लगी। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने एक नज़र आर्यांश की तरफ देखा और बाहर चली गई। आर्यांश को यही लगा कि दीवा कॉल पर बात करने के लिए बाहर गई है। आर्यांश घूरते हुए दीवा की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, किसका कॉल आया होगा जो बात करने के लिए बाहर जाना पड़ा। दीवा कॉल रिसीव करते हुए एक कमरे में पहुंच चुकी थी जो फूलों से घिरा हुआ था। ये इनाया का कॉल था। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, इनाया बच्चा, तुम ठीक हो ना? चोट में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। बड़ी मॉम आपसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा लग रही थी, इनाया ने मायूसी से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मॉम से बात हो गई थी और थोड़े ही दिनों में मैं डिनर करने के लिए घर पर आऊंगी। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, दीवा ने उसे समझाते हुए कहा। साथ ही उसे अच्छा लगा कि वो उसके बारे में सोच रही थी। चलो, कोई तो था जिसे दीवा की फिक्र थी। इनाया ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कहा, अच्छा दीदी, क्या आपकी समय सर से कोई बात हुई? हाँ, उसका मैसेज तो रोज ही आता है, लेकिन हमारी इतनी बात नहीं हो पाती। कुछ हुआ है क्या? दीवा ने पूछा। हाँ, वो मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारी एक टीचर ने समय सर को प्रपोज किया था, लेकिन समय सर ने मना कर दिया। मुझे लगता है वो आपको पसंद करते हैं। मैंने उनके कंप्यूटर में आपकी फोटोज भी देखी थी, इनाया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दीवा थोड़ा चौंक गई थी। वो बोली, लेकिन उसे मेरी फोटो कैसे मिली होगी? सोशल मीडिया अकाउंट से। और कहा, दीदी मुझे भी यही लगता है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करती? इनाया ने उम्मीद से कहा। तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब बातों पर। रही बात मेरी और समय की, तो हम बस सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो, दीवा ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उस दिन दीवा ने जब आर्यांश को समय के बारे में बताया था, उसके बाद से उसने समय से ठीक से बात नहीं की थी। दीवा ने अपना चैट बॉक्स निकाल कर देखा तो समय उसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज करता था। वो हमेशा पूछता था क्या उसने खाना खाया है, दीवा बस उसे फॉर्मली रिप्लाई देती थी। मुझे समय से दूरी बनाकर रखनी होगी, कहीं उसने ये पता लगा लिया कि मैं जिस समय की बात कर रही थी वो लड़का नहीं लड़की है, तो फिर बवाल हो जाएगा, दीवा ने मन ही मन कहा और फिर सारी चैट हिस्ट्री उड़ा दी थी। इनाया से बात करने के लिए दीवा ने दूसरी तरफ पलटी तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी कमरे में है। कमरा काफी खूबसूरत और साफ सुथरा था। तभी उसकी नजर वहां पड़ी पियानो पर गई। दीवा चाहे म्यूजिक से कितनी भी दूरी बनाकर रख ले, लेकिन उसके कदम अपने आप पियानो की तरफ खींचे चले गए। उसने उसका ढक्कन उठाकर देखा तो पाया कि उसकी रोज सफाई होती थी। उन सफेद और काले बटन को देखकर दीवा का दिल धड़कने लगा। अचानक दीवा के दिमाग में अपनी दोस्त की यादें ताजा हो गईं। वे दोनों साथ में पियानो बजाया करती थी, कभी वो लीड करती तो कभी दीवा। उसके जाने के बाद दीवा ने पियानो को पूरी तरह से छोड़ दिया था। ऐसा लगता था कि अब उसे संगीत में कुछ महसूस नहीं होता। वो लड़की जो उसकी दोस्त थी, वो उसकी पार्टनर ही नहीं बल्कि उसके संगीत की आत्मा हुआ करती थी।
अचानक दीवा के हाथ पियानो के कीबोर्ड पर गए तो एक हल्की सी प्यारी सी धुन निकली। दीवा ने तुरंत अपना हाथ दूर कर लिया था। उसकी आंखें नम होने लगीं। वो दूसरी तरफ पलटी तो उसने देखा आर्यांश वहां हाथ बांधे खड़ा उसी को देख रहा था। क्या हुआ, पीछे क्यों हट गई? तुम तो बहुत अच्छे से पियानो बजाती हो, आर्यांश ने भौंए उठाकर पूछा। अचानक दीवा कांपने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैं अच्छा नहीं बजाती हूँ, मुझे पियानो से नफरत है। दीवा ने पहले भी आर्यांश को यही कहा था। आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, तुम मुझे तो धोखा दे सकती हो लेकिन अपने दिल को नहीं। नफरत होती तो अपने आप हाथ कीबोर्ड पर नहीं जाते। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मुझसे म्यूजिक और पियानो के बारे में बात मत करो, मुझे गुस्सा आता है, एक बेचैनी सी महसूस होती है, दीवा ने तेज आवाज में कहा। क्यों, पियानो को देखकर तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है? आर्यांश कड़वाहट से बोला। बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, दीवा ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा फिर कैसा है, आर्यांश ने भौंए उठाकर पूछा। अपनी लिमिट में रहो आर्यांश, दीवा ने गुस्से में जवाब दिया। तो हमारी डियर मिस गोइंका को गिल्ट फील हो रहा है, आर्यांश दीवा को परेशान करते हुए बोला। दीवा ने पियानो को वापस बंद कर दिया था। उसने सार्केस्टिकली कहा, क्या तुम्हारा कोई घर समुद्र के पास है? एक्चुअली बहुत अजीब और गहरी सोच है तुम्हारी, डूब कर मर जाने का मन कर रहा है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी कर देता हूँ, वैसे मेरे पास काफी सी फेसिंग विला है, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, दीवा ने हार मानते हुए कहा और वहां से डाइनिंग एरिया में चली गई। आर्यांश भी उसके पीछे पीछे आ गया था। डिनर करने के बाद दीवा अपनी थीसिस एडिट करने में लगी थी तो वहीं आर्यांश उसे बीच बीच में परेशान कर रहा था। इस बीच दीवा के मोबाइल पर समय का मैसेज आया। दीवा ने मैसेज को पढ़ लिया था लेकिन जवाब नहीं दिया। उसके वापस बिना रिप्लाई दिए मोबाइल रखने पर आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए था, बेचारा पागल हो रहा होगा ये सोचकर कि तुमने खाना खाया है या नहीं। दीवा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अचानक उसे कुछ स्ट्राइक हुआ तो वो चिढ़ते हुए बोली, तुमने मेरा अकाउंट अपने फोन में लॉगिन किया है? सीरियसली, तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है? थोड़े दिनों पहले तुमने अपना अकाउंट मेरे टैबलेट में लॉगिन किया था और लॉग आउट करना भूल गई थी, आर्यांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। दीवा ने राहत की सांस ली। उसने समय के नंबर समय के बजाय मिस्टर अरोड़ा के नाम से सेव कर दिए थे। आर्यांश इतना नहीं सोचने वाला था, ये सोचकर उसे राहत मिल रही थी। तभी दीवा की नजर आर्यांश पर पड़ी जो गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। उसने कहा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, टीचर से रोमांस करने का मन कर रहा है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे बहन की क्लास टीचर है, दीवा ने अपनी सफाई में कहा। हाँ, तुम्हारी बहन के टीचर को दिन रात ये जानने में इंटरेस्ट रहता है कि तुम कब सोती हो, कब उठती हो, कब खाना खाती हो या बाकी सब चीज करती हो, आर्यांश ने गुस्से में कहा। दीवा को आर्यांश की बातों से यही समझ आया कि उसे सब पता चल गया है, तो वहीं आर्यांश का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। एक बार फिर दीवा से झूठ बोल रही थी, डॉट डॉट डॉट। आर्यांश ने एक बार फिर दीवा की चोरी को पकड़ लिया है। देखते हैं इस बार क्या होता है। वैसे क्या लगता है, कभी इन दोनों के बीच में प्यार होगा भी या नहीं?